One day we will have a new body.
एक दिन हम लोग पास नई देह होगी.
And we will never grow tired.
और फिर हम लोग थकेंगे नहीं.
And we will worship God.
और फिर हम लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे.
And we will love Christ.
और हम लोग मसीह से प्रेम करेंगे.
And we will live in a new heavens and a new earth.
और हम लोग नई पृथ्वी और नए स्वर्ग में हमेशा तक रहेंगे.
And we will serve and enjoy Him.
और हम लोग उसकी सेवा करेंगे, उसका आनंद उठाएंगे हमेशा हमेशा के लिए.
But now we are here today.
लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे हैं आज.
And we still have this body.
और अभी भी हमारे पास ये शरीर है.
And sometimes we grow very tired.
और कभी कभी हम लोग थक जाते हैं.
But God will give us strength.
लेकिन परमेश्वर हमें सामर्थ देगा.
How does He give us strength?
कैसे सामर्थ देता है वो हमको?
By the power and the ministry of the Holy Spirit.
पवित्र आत्मा की सामर्थ और सेवकाई के द्वारा.
Now for 2 days we've been talking about gospel truth.
पिछले दो दिन से हम लोग सुसमाचार सत्यों के बारे में बात कर रहे हैं.
We sought to answer several important questions.
हम लोग ने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया.
What is the gospel?
सुसमाचार क्या है?
What is man's problem?
मनुष्य की समस्या क्या है?
What does it mean to be in Adam?
आदम में होने का मतलब क्या है?
What does it mean to be under the law?
व्यवस्था के अधीन होने का अर्थ क्या है?
What is true salvation?
सच्ची उद्धार क्या है?
How is the salvation applied to our life?
हमारे जीवनों में उद्धार कैसे लागू किया जाता है?
What is justification?
धर्मी ठहराए जाने का मतलब क्या है?
Difference between justification and sanctification?
धर्मी ठहराए जाने और पवित्रीकरण में फर्क क्या है?
It's very basic but very important truth.
बहुत ही आधारभूत किंतु अत्यंत सत्य महत्वपूर्ण सत्य.
Study the word of God.
आपको परमेश्वर के वचन के अध्ययन करना है.
Grow in your understanding of the truth.
आपको सत्य के समझ में बढ़ते चले आना.
You must believe it more deeply in your heart.
आपको अपने हृदय में इसको और भी अधिक गहराई से समझ विश्वास करना है.
More clearly with your mouth.
और अपने मुंह से और भी अधिक स्पष्टता के साथ इसको आपको संचार करना है.
Today we've been moving to talk about the Christian life and experience.
और आज हम लोग मसीही जीवन और मसीही अनुभव में बढ़ रहे हैं आगे.
In our exam we asked several basic questions.
और हमने कई आधारभूत प्रश्नों को पूछा है.
What is sanctification?
पवित्रीकरण क्या है?
And we said sanctification was three things.
मेरे हिसाब से और हमने बताया था कि पवित्रीकरण तीन बातें हैं.
Positional or initial sanctification.
पवित्रीकरण का स्थान.
Progressive or continual sanctification.
दशा या अवस्था, उसके बाद प्रगतिशील पवित्रीकरण.
And final and complete sanctification.
फिर उसके बाद अंतिम और संपूर्ण पूरा हुआ पवित्रीकरण.
Then we ask this question, what does it mean that the believer is in Christ?
और फिर उसके बाद हमने पूछा था कि यीशु मसीह में विश्वासी के होने का मतलब क्या होता है?
It means that he is united to Jesus Christ.
और इसका ये मतलब है यीशु मसीह से जुड़े होना, मिल जाना.
And that is the source of all the blessings that flow forth from God.
और फिर वही चीज है मसीह से सारी आशीषों का सूत्र.
And we saw that we were united to the first Adam in two ways.
और हमने देखा था पहले आदम से हम लोग दो तरीके से जुड़े हुए हैं.
Legally by representation and then physically by ordinary generation.
वैधानिक तौर से हम लोग प्रतिनिधित्व के द्वारा और सामान्य तौर से शरीर के द्वारा प्रजनन के द्वारा.
What does it mean to be in Jesus Christ?
यीशु मसीह में होने का मतलब क्या है?
We saw it meant to be united to Jesus Christ.
और इसका मतलब है कि यीशु मसीह से जुड़े होना.
And over 150 times in the New Testament, the Bible emphasizes our union with Jesus Christ.
और लगभग 150 बार से ज्यादा बाइबल यीशु मसीह के साथ मिलन का वर्णन करती है.
And we're united to Jesus Christ in two ways.
और यीशु मसीह से हम लोग दो तरीके से जुड़े होते हैं.
Legally by representation.
वैधानिक तौर से प्रतिनिधित्व के द्वारा.
And spiritually by the new birth.
और आत्मिक तौर से नए जन्म के द्वारा.
One is the source of our justification.
एक हमारे धर्मी ठहराए जाने का
सूत्र है. Is the source of our sanctification.
और दूसरा हमारे पवित्रीकरण का सूत्र.
One gives us a new position.
एक हमें नई अवस्था देता है.
One gives us a new condition.
और दूसरा हमें नई स्थिति देता है, परिस्थिति देता है.
One is by imputation or legal transfer.
एक वैधानिक स्थान के द्वारा होता है.
And the other one is by impartation, by my spiritual life.
और दूसरा होता है आत्मिक जीवन का प्रदान करने के द्वारा.
One deals with the guilt of our sin.
और एक जो है हमारे पाप के दोष बोध से.
And the other deals with the power and the influence of our sin.
एक हमारे पाप के दोष बोध से बर्ताव रखता है, दूसरा हमारे पाप के प्रभाव से बर्ताव रखता है.
One aspect of our union with Christ gives us assurance.
और एक जो है हमें आश्वासन प्रदान करता है.
The other aspect of our union with Christ gives us perseverance.
और मसीह से जुड़ने का दूसरा पहलू हमको बने रहने में मदद करता है.
All the blessings of the Christian life flow forth from our spiritual union with Jesus Christ.
मसीह से जुड़े होने की सारी आशीषें से ही हमें सारी आत्मिक आशीषें प्राप्त होती हैं.
Now we were united to Christ eternally.
हम यीशु मसीह से अनंत काल से जुड़े हुए हैं.
He chose us in Christ before the foundation of the world.
क्योंकि हम यीशु मसीह से अनंत काल से जुड़े हुए थे, इसलिए उसने हमको सृष्टि से पहले ही चुन लिया.
Now we were not actually there.
यद्यपि हम वास्तविक तौर से उस समय वहां पर थे,
but we were there in our representative.
लेकिन हम लोग अपने प्रतिनिधि के भीतर थे.
In the mind and in the purpose and in the plan of God.
और परमेश्वर के मस्तिष्क में और परमेश्वर के विचारों में, उसके दिमाग में हम लोग पहले उस समय थे.
United with Jesus Christ also in redemptive history.
ना सिर्फ हम भूतकाल में आरंभ में प्रभु के साथ थे, लेकिन हम इतिहास में भी यीशु मसीह से जुड़े हुए थे.
When he lived his righteous life.
जब यीशु मसीह ने अपने धर्मी जीवन जिया.
When he died his sacrificial death.
जब त्यागपूर्ण बलिदान की वजह से मर गए.
And he gloriously raised from the dead.
और जब वो महिमामय तरीके से जिलाए गए.
The Bible says we were in him. We were united to him.
परमेश्वर के वचन बताते कि हम उस समय भी उससे जुड़े हुए थे, उसमें पाए जा रहे थे.
By representation.
प्रतिनिधित्व के द्वारा.
But in our own spiritual and personal experience.
लेकिन हमारे स्वयं के व्यक्तिगत और आत्मिक अनुभव में,
when we believe in Jesus Christ,
जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं,
we are savingly united to him,
तब हम उससे बचाए जाने हेतु जुड़ जाते हैं,
both legally by representation,
दोनों वैधानिक तौर से प्रतिनिधित्व के अनुसार,
a new status, a new position,
वो हमको नया अस्तित्व या नया स्थान या दशा देता है,
and both spiritually by the new birth,
और फिर दूसरी तरह आत्मिक जन्म के द्वारा, नए जन्म के द्वारा,
and that gives us a new condition, spiritual condition.
और वो हमको नई आत्मिक स्थिति या स्वभाव प्रदान करता है.
Now we're united with Jesus Christ in the heavenlies.
अब हम लोग यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं स्वर्गीय स्थानों में.
He represents us.
वो हमारा प्रतिनिधित्व करता है.
We are spiritually united to him even right now.
अभी भी इस समय भी हम आत्मिक तौर से जुड़े हुए हैं जबकि स्वर्ग में हैं.
We are seated with him even now in the heavenly places.
और इस समय अभी भी इस समय हम यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पर दाहिने हाथ पर विराजमान
हैं. We are the children of God.
अब हम परमेश्वर की संतान
हैं. But it does not as yet appear what we shall be.
यद्यपि हम ऐसा नहीं दिखता कि हम क्या होंगे उस समय.
And one day we'll be united with Christ eternally.
लेकिन एक दिन हम अनंत काल तक यीशु मसीह से जुड़ जाएंगे.
And Paul says in 1 Thessalonians, thus we shall forever be with the Lord.
और पौलुस थिस्सलुनीकियों के लोगों से कहता है, और इसलिए हम प्रभु के साथ अनंत काल तक हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे.
But this morning we talked about our personal saving union with Christ.
So आज की सुबह हमने अपने व्यक्तिगत उद्धार के काम के बारे में देखा था, कैसे हम जुड़ने के द्वारा उद्धार मिलता है हमको.
It is a both legal and a spiritual union.
और वो दोनों वैधानिक और आत्मिक मिलन है.
And our justification and sanctification flow from our union with him.
और यीशु मसीह से मिलन के कारण हमारा धर्मी ठहराया जाना और हमारा पवित्रीकरण दोनों संभव होता है.
In all of life you need to deepen in your understanding and experience of fellowship and communion with the resurrected and exalted Christ.
हमारे जी उठे और पुनरुत्थित मसीह और ऊंचे पे विराजमान मसीह के संबंध में हमारे अनुभव को प्रतिदिन गहरा होता जाना चाहिए.
We've been talking about sanctification, the believer's experience.
हमने बात किया था पवित्रीकरण एक विश्वासी का अनुभव होता है.
What is it?
क्या होता है पवित्रीकरण?
From what does it flow?
और कहां से प्रवाह होता है पवित्रीकरण? कहां से आता है?
Say something about how our sanctification is empowered and assisted.
तो पहले हमने बोला कहां से आता है, अब हम बात करेंगे कौन सी चीज, कौन सी बात हमारे पवित्रीकरण में मदद करती है, सहायता करती है.
Now this wasn't on your exam.
यद्यपि आपके प्रश्न में नहीं था.
I think it's important that we review these simple and basic truths.
लेकिन महत्वपूर्ण है कि हम लोग ये आधारभूत और महत्वपूर्ण सत्यों को देखें. हैं.
Jesus said, I will not leave you as orphans.
और यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमको अनाथों के रूप में नहीं छोड़ूंगा.
I will send another helper who will be with you and who will be in you.
मैं तुमको एक और सहायक भेजूंगा जो तुम्हारे साथ होगा और तुम्हारे भीतर होगा.
And if you're going to preach the word of God,
और अगर आप परमेश्वर के वचन का प्रचार करेंगे,
if you're going to be a holy man,
अगर आप पवित्र व्यक्ति होना चाहते हैं,
if you're going to grow in your understanding of the truth,
अगर आप सत्य की समझ में बढ़ना चाहते हैं,
if you're going to build and establish biblical churches,
और अगर आप बाइबल पर आधारित कलीसियाओं की स्थापना करना चाहते
हैं,
तो आप अपने आप की सामर्थ्य में नहीं कर सकते.
Gift is not enough.
हमारा वरदान काफी नहीं है.
Knowledge is not enough.
हमारा ज्ञान काफी नहीं है.
Education is not enough.
हमारी शिक्षा काफी नहीं है.
Zeal is not enough.
हमारा जोश काफी नहीं है.
You must have the power of God.
हमारे पास परमेश्वर की सामर्थ्य का होना आवश्यक है.
And how does that power come to us?
और वो सामर्थ्य हमारे पास कैसे आती है?
By the ministry of the Holy Spirit.
वो है पवित्र आत्मा की सेविकाई के द्वारा.
Let's talk about that briefly.
आइए हम लोग इसके बारे में संक्षिप्त रीति से
बातचीत
करें. About
a year ago we talked about this.
और लगभग एक साल पहले हमने इसके बारे में बातचीत किया था.
But it would be useful for us to review this briefly again.
और लेकिन ये महत्वपूर्ण होगा कि हम लोग इसके बारे में जल्दी से पुनरावृत्ति कर लें.
We're talking about the preacher's holiness, the preacher's sanctification.
हम लोग प्रचारक की पवित्रता के बारे में बात कर रहे हैं, पवित्रीकरण के बारे में बात कर रहे हैं.
And we're talking about the power for sanctification.
हम लोग पवित्रीकरण के सामर्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं.
Now when we study the Holy Spirit, there are several different heads that we must be aware of.
और जब हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं, तो अलग अलग विषय हैं जिनके बारे में हमें ध्यान देना चाहिए.
We study often the person of the Holy Spirit.
हम पवित्र आत्मा के व्यक्ति या जन के बारे में बात कर रहे हैं.
That he is deity.
कि वो परमेश्वर है, परमेश्वरत है इसमें.
And we often talk about the fruit of the Holy Spirit.
और हम पवित्र आत्मा के का फल के बारे में बात कर रहे हैं.
That is those graces that he increasingly produces in our life by his power.
मतलब उन अनुग्रहों के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे जीवन में बढ़ते चले जाते हैं उसके सामर्थ्य की वजह से.
Talk about the gifts of the Holy Spirit.
और हमने पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में बात किया.
That is those spiritual abilities that he gives to each Christian in order to help build up the body of Christ.
मतलब वो कि पवित्र आत्मा वे है क्षमताएं जो प्रदान करता है मसीहों को ताकि परिवार मसीह परिवार की वृद्धि हो सके, बढ़ोतरी हो सके.
Let me stop here and ask you a question again.
अब मैं रुक करके आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ.
The gifts of the Spirit,
पवित्र आत्मा के वरदान,
and the fruit of the Spirit,
पवित्र आत्मा का फल,
are not the same thing.
दोनों एक ही बात नहीं है.
Which one of these is the evidence of deepening true spiritual maturity?
इन दोनों में से कौन सा प्रमाण है गहरी या बढ़ती हुई आत्मिक परिपक्वता का?
It is the gifts of the Spirit.
क्या वो आप पवित्र आत्मा के वरदान हैं? कि पवित्र आत्मा का फल कौन सी चीज, पवित्र आत्मा का वरदान या पवित्र आत्मा का फल, इन दोनों में से कौन सी ऐसी बात है जो हमें प्रमाण करती है या दिखाती है, साबित करती है कि कोई व्यक्ति परमेश्वर के परिपक्वता में, पवित्र आत्मा की परिपक्वता में बढ़ता चला जा रहा है? पवित्र आत्मा का फल कि पवित्र आत्मा का वरदान? फल की वरदान, फल, फल.
All right, let me ask you this.
अच्छा, मैं आपसे ही पूछता हूँ.
The Corinthian church.
कुरिन्थियों की कलीसिया.
When we talk about the gifts of the Spirit and the fruit of the Spirit, which one did they have and which one did they not have?
अच्छा, कुरिन्थियों की कलीसिया में जब हम बात करते हैं तो कुरिन्थियों की कलीसिया के पास क्या था? क्या उनके पास पवित्र आत्मा का फल था या पवित्र आत्मा के वरदान थे? दोनों में से क्या था, क्या नहीं था?
Which one did they have?
उनके पास क्या था? उनके पास वरदान थे. कुरिन्थियों के पास क्या नहीं था? उनके पास फल नहीं था.
Listen carefully. Listen carefully.
ध्यान सुनिए इस बात को.
The fruit of the Spirit is the growing evidence of a holy and mature life.
अब ध्यान सुनिए इस बात को. पवित्र आत्मा का फल एक आत्मिक जीवन की परिपक्वता और बढ़ोतरी और वृद्धि का प्रमाण है, सबूत है.
Did the Corinthian church have that?
क्या कुरिन्थियों कलीसिया के पास पवित्र आत्मा का फल था? था कि नहीं था? सही में नहीं था?
They saying yes?
They saying no.
No, okay.
Most of them say no.
Listen carefully.
ध्यान से इस बात को.
You must understand the difference between the two.
आपको इन दोनों में फर्क समझना है.
A man may have some spiritual gifts, but not have spiritual graces or spiritual fruit.
ऐसा संभव है कि एक व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा का वरदान हो, पवित्र आत्मा के वरदान हो, किंतु उसके अंदर पवित्र आत्मा का फल ना हो. ऐसा संभव हो सकता है.
Having spiritual gifts is not the evidence of spiritual maturity.
पवित्र आत्मा के वरदान होना इस बात का प्रमाण नहीं है, सबूत नहीं है कि कोई व्यक्ति आत्मिक तौर से परिपक्व है.
For example, a man may have a strong gift to preach and teach.
हो सकता है कोई व्यक्ति के पास बड़ा ही वरदान प्रचार करने का या शिक्षा देने का.
But every Sunday after church he goes home and beats his wife.
लेकिन हो सकता है प्रत्येक रविवार प्रचार करने के बाद अपने घर वापस जाता हो, अपनी पत्नी की धुनाई करता हो या पिटाई करता हो.
He has the gift of the Spirit.
उसके पास पवित्र आत्मा का वरदान तो है.
He can preach.
वो प्रचार कर सकता है.
But he doesn't have love.
लेकिन उसके पास प्रेम नहीं
है. Joy.
उसके पास आनंद नहीं है.
He doesn't have patience.
उसके पास संयम नहीं है.
He doesn't have gentleness.
उसके पास
संयम. He doesn't have kindness. He doesn't have goodness.
उसके पास भलाई नहीं
है. He doesn't have self-control.
उसके अंदर संयम नहीं है.
But he can preach.
लेकिन वो प्रचार कर सकता है.
He understands knowledge.
वो समझ सकता है.
He's been to seminary.
वो सेमिनरी जा
चुका है. He's got a PhD.
वो तो फिर डॉक्टरी की डिग्री
है. But he has an impure life.
लेकिन उसका अपवित्र जीवन है.
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए इस बात को.
Spiritual gifts are no indication of spiritual maturity.
आत्मिक वरदान आत्मिक परिपक्वता का प्रमाण नहीं है या समझदारी का प्रमाण नहीं है.
The fruit of the Spirit, Paul tells us in Galatians chapter 5.
गलतियों के पांचवें अध्याय में पौलुस हमको अपवित्र आत्मा का फल के बारे में बताता है.
This is the evidence of Christ-like character.
ये है सबूत यीशु मसीह के समान चरित्र होने का.
So just because you have gift doesn't mean you are a holy man.
इसका सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास वरदान है इसका ये मतलब नहीं है कि आप पवित्र व्यक्ति हैं.
Just because you have knowledge doesn't mean you're a holy man.
सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास ज्ञान है इसका मतलब यह नहीं कि आप पवित्र व्यक्ति हैं.
जस्ट बिकॉज यू हैव एन एजुकेशन डजंट मीन यू आर अ होली मैन.
सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास शिक्षा है इसका यह मतलब नहीं कि आप पवित्र व्यक्ति हैं.
जस्ट बिकॉज यू राइट थिंग्स इन योर नोटबुक एंड हैव अ फुल नोटबुक डजंट मीन दैट यू आर अ मैच्योर मैन.
सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास एक कॉपी है और उसमें आप कॉपी भर करके नोट्स ले लेते हैं इसका मतलब यह नहीं कि आप पवित्र व्यक्ति हैं.
वेयर डज गॉड वांट यू टू राइट इट.
परमेश्वर कहां चाहता है कि आप लिखें इन बातों को.
On your heart,
अपने हृदयों में,
and believe it in your life,
और अपने जीवन में विश्वास करते,
and live it in your life,
अपने जीवन में जिएं इसको,
so that in every area,
ताकि सारे क्षेत्रों में,
you are going as a holy example,
आप एक पवित्र उदाहरण के रूप में
बढ़ते
चले जा रहे हैं,
so when you stand up to preach,
ताकि जब आप खड़े हों प्रचार करने के लिए,
and your wife is sitting in the church,
और आपकी पत्नी खड़ी हुई है सामने,
and you tell the people,
और जब आप लोगों से कहते हैं,
you men,
आप आदमी लोग,
you must love your wife,
आपको अपनी पत्नी से प्रेम करना,
you must be kind to your wife,
आपको अपनी पत्नी के प्रति दयालु होना,
you must be patient with your wife,
और आपको अपनी पत्नी से संयमी होना.
Be gentle with your wife.
और अपने पत्नी के साथ संयमशील होना है. अपने पत्नी को सिखाना है.
Spend time with your wife.
अपने पत्नी के समय व्यतीत करना है.
You must pray with your wife.
अपने पत्नी से प्रार्थना करना है.
And your wife is looking at you.
और आपकी पत्नी आपको ऐसे देख रही है.
What you say.
जो आप कहते हैं
and what you do
और जो आप करते हैं
must be the same thing.
दोनों में एक ही बात होनी
चाहिए. Jesus said, don't be like the Pharisees.
यीशु मसीह ने कहा फरीसियों के समान मत बनो.
You do what they say, but don't do what they do.
तुम कहते हो वो क्या हाँ वो कहते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं.
Why?
क्यों?
They say one thing, but they do another thing.
एक चीज कहते हैं लेकिन करते कुछ और हैं.
So when we talk about the ministry of the Holy Spirit.
जब हम पवित्र आत्मा की सेवकाई के बारे में बात करते
हैं, we're not talking about the person of the Spirit.
हम पवित्र आत्मा के जन के बारे में बात नहीं करने आ रहे.
We're
कौन है वो उसके बारे में बात करने आ रहे.
The gifts of the Spirit.
हम उसके वरदान के बारे में नहीं बात करने आ रहे.
And we're not even today talking about the fruit of the Spirit.
और आज हम फल के बारे में भी नहीं बात करने आ रहे.
We're talking about the ministry of the Holy Spirit.
लेकिन आज हम पवित्र आत्मा की सेवकाई के बारे में बात करने आ रहे.
The works of the Holy Spirit.
पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में बात करें.
Those things that he does in the life of a believer.
वो काम जो पवित्र आत्मा एक विश्वास विश्वासी के जीवन में करता है उसके बारे में हम बात करने आ रहे
हैं. We talk about the work or the ministry of the Holy Spirit. We talk about it at three different times.
और जब हम पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में बात करते हैं तो हम तीन विभिन्न बातों के समयों के बारे में बात कर रहे हैं.
There are some things that the Holy Spirit does before a man becomes a Christian.
कुछ काम ऐसे हैं जो पवित्र आत्मा करता है लोगों के बीच में इससे पहले कि वो विश्वासी बन जाए.
He may illuminate his mind.
वो उनके मस्तिष्क को प्रकाशन मान करता
है. He may convict his heart.
वो उनके हृदय को कचोटता है या हाँ कायल करता है. धन्यवाद.
Then he may send forth his life by effectual call and regeneration and raise him from the dead.
और फिर वो आगे उनमें जीवन भेजता है और प्रभावशाली बुलाह के द्वारा उनको जिलाता
है. Those things at the moment of conversion.
ये सारी बातें वो हृदय परिवर्तन के समय में करता है.
God gives him life.
परमेश्वर पवित्र आत्मा को जीवन देता है. उनको दो दान देता है.
The gift of faith.
विश्वास का दान और पश्चाताप का दान.
He believes on the Lord Jesus Christ.
और यीशु मसीह पे विश्वास करता है.
And he repents toward God.
और वो परमेश्वर की ओर पश्चाताप करता है. और जिस समय वो
The Holy Spirit baptizes him into the body of Christ.
परमेश्वर पवित्र आत्मा उसको मसीह की देह में बपतिस्मा देता है.
The Holy Spirit permanently indwells him.
और पवित्र आत्मा उसके भीतर हमेशा के लिए स्थायी रीति से वास करता है.
Seals him until the day of redemption.
पवित्र आत्मा छुटकारे के दिन तक ही उस पर छाप लगाता है.
Now we've talked about those things before.
हम इन बातों के बारे में पहले बात कर चुके हैं.
There is illumination of the mind.
मस्तिष्क का प्रकाशन मान
होना. There may be conviction. Of the heart and the conscience.
और हृदय और विवेक का कायल किया जाना.
Then there's the impartation of spiritual life.
और आत्मिक जीवन का प्रदान किया जाना.
And a man believes.
और मनुष्य विश्वास
करता है. And he is baptized by the Holy Spirit.
और पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा
होता है. And the Spirit of God joins him unto the body of Christ in the living head.
इसका ये मतलब है बपतिस्मे का मतलब ये है कि पवित्र आत्मा उसको जीवित मसीह की देह में जोड़ देता है.
Because baptism has the idea of identity with and union with.
और बपतिस्मे का विचार ये है कि मिलन मसीह के साथ और जुड़ जाना मसीह के साथ.
All believers,
सारे विश्वासी लोग,
have been baptized by the Holy Spirit.
उन सब का पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा हुआ है. सारे विश्वासी लोग,
permanently indwelt by the Holy Spirit.
उनके अंदर स्थायी रीति से हमेशा के लिए पवित्र आत्मा वास करता है. सारे विश्वासियों के अंदर,
they have been sealed by the Holy Spirit.
सारे विश्वासियों को पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई है.
1 Corinthians chapter 12.
And
verse
13.
By one Spirit we were all baptized into one body to make us to drink of one spiritual drink.
एक आत्मा के द्वारा हम एक देह में हमारा बपतिस्मा हुआ है एक पेय पीने के लिए.
Listen carefully.
ध्यान सुनिए.
Now we're not talking about those ministries today.
हम उन सेवाओं के बारे नहीं बात कर रहे हैं.
Those are somewhat non-experiential ministries that happen one time and are completed at the point of conversion.
ये उस तरह की सेवा है जो एक बार के लिए होती है विश्वासियों के जीवन में हृदय परिवर्तन समय में और इसका अनुभव करना शायद हमें अनुभव नहीं होता है
But we're talking now
या महसूस नहीं होता है.
About the experiential ministry of the Holy Spirit in the life of the believer after he is converted.
हम बात कर रहे हैं आज एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा की अनुभव की जाने वाली सेवा हृदय परिवर्तन होने के बाद.
Now there are certain things that the Spirit of God does when we believe that are permanent, that are unchanging, and are applicable to all Christians. They are permanent.
कुछ बातें हैं पवित्र आत्मा की जो एक मसीही के जीवन में होती हैं, वो हमेशा के लिए होती हैं, वो बदलती नहीं है और वो सारे विश्वासी के लिए हैं. एक बार की हमेशा के लिए ना बदलने वाली सारे विश्वासियों के जीवन में पवित्र आत्मा के अंदर कुछ कार्य होते हैं.
After a person believes, the Spirit of God also works experientially in our lives.
लेकिन विश्वास करने के बाद परमेश्वर पवित्र आत्मा विश्वासियों के जीवन में काम करता है जिसको हम अनुभव कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं.
And these particular ministries are not necessarily experienced in the same way by all believers.
और ये जो सेवा है पवित्र आत्मा की जरूरी नहीं है कि सारे विश्वासी लोग एक ही समान तौर पे अनुभव करें इस सेवा का.
And these particular ministries of the Holy Spirit in the life of the believer are subject to change. They can either progress and grow or they can degress and be diminished.
और ये जो सेवा है पवित्र आत्मा की लोगों के जीवन में अनुभव पर आधारित, ये बढ़ सकती है, घट सकती है समय के अनुसार, अलग अलग लोगों में, अलग अलग समय में.
And if you're going to be a holy man,
और यदि आप एक पवित्र व्यक्ति बनना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर का होना चाहते हैं,
understand the word of God.
यदि आप परमेश्वर वचन समझना चाहते
हैं, you're going to preach with power.
यदि आप सामर्थ्य
प्रदान करना चाहते हैं, you're going to overcome sin.
और यदि आप पाप पे विजय पाना चाहते हैं,
you need the expanding experiential ministries of the Holy Spirit in your life.
तो आपको बढ़ती हुई अनुभवकारी पवित्र आत्मा की सेवा को अपने जीवन में अनुभव करना है.
What are those ministries?
वो कौन सी सेवाएं हैं?
There are many of them. Let me mention several that are very important.
बहुत सारी हैं, किंतु कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं.
We talked about this a year or so ago.
हमने बात किया था एक या दो साल पहले इस बात को.
My question to you is this.
मेरा प्रश्न आपसे ये है.
In this last year,
इस पिछले वर्ष में,
have you experienced the expanding experiential influence and ministries of the Holy Spirit in your life?
मेरा ये प्रश्न है कि आपने अपने जीवन में पिछले वर्ष में पवित्र आत्मा की बढ़ती हुई अनुभवकारी और प्रभावशाली सेवा को अनुभव किया है कि नहीं किया है.
Let me mention several of them.
मैं आपको कुछ बातों को बता देता हूँ.
We need the power and ministry of the Spirit of God.
हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ और सेवकाई की आवश्यकता है.
Now you understand what we're talking about.
क्या आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं?
We're not talking about the person of the Holy Spirit.
हम यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व
की बात नहीं कर रहे हैं.
हम पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में
बात talking about the fruit of the Spirit.
हम पवित्र आत्मा के फल के बारे में बात कर रहे
हैं. We're not talking about what the Holy Spirit does before a person believes.
हम बात नहीं कर रहे पवित्र आत्मा क्या करता है विश्वास करने से पहले किसी व्यक्ति के जीवन में.
Spirit does the moment a person does believe.
हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं क्या पवित्र आत्मा क्या करता है जब एक व्यक्ति विश्वास करता है यीशु मसीह पे.
Ministry of the Holy Spirit after a person believes.
हम बात करें ये पवित्र आत्मा की सेवकाई के बारे में एक व्यक्ति के जीवन में विश्वास करने के बाद के समय की बात करें.
It is experiential.
ये इसको अनुभव किया जा सकता है.
It can be growing and expanding.
इसको बढ़ते हुए देख सकते हैं और उसका प्रभाव बढ़ते हुए देख सकते हैं.
Your own power is not enough.
आपके स्वयं की सामर्थ्य काफी नहीं है.
Your own strength and gift is not enough.
आपके स्वयं की ताकत और वरदान काफी नहीं है.
You need divine help.
आपको ईश्वरीय मदद की आवश्यकता है.
Jesus said, I have not left you alone.
यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें अकेले नहीं छोड़ दिया है.
Now this is very simple but very important.
ये बहुत ही साधारण है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है.
Your responsibility is to be able to teach and encourage the people of God so they will be able to know how to walk and have to have the help of the Holy Spirit.
आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को सिखाएं समझाएं ताकि वे लोग भी जान सके कैसे पवित्र आत्मा की मदद मिल सके उसके साथ चल सके.
These ministries of the Holy Spirit can grow and increase or they can shrink and decrease in the believer's experience.
एक विश्वासी के अनुभव में पवित्र आत्मा की सेविकाई बढ़ सकती है या घट सकती है.
Number one,
पहली बात,
that's what we call the witness of the Spirit.
जो पहली बात हम कह रहे हैं पवित्र आत्मा की गवाही, पवित्र आत्मा की गवाही.
And what is the purpose of the witness of the Spirit?
पवित्र आत्मा की गवाही का उद्देश्य अभिप्राय क्या है?
It is to give us growing assurance regarding our salvation.
ये है हमारे जीवन में हमारे उद्धार के प्रति बढ़ते हुए आश्वासन को प्रदान करने के लिए.
Look at familiar verse in Romans chapter 8.
और रोमियो उसके आठवें अध्याय में देख लीजिए.
We call this the witness or the testimony of the Holy Spirit.
ये हम इसको बताते हैं पवित्र आत्मा की गवाही या पवित्र आत्मा की साक्षी.
What is it and what does he do?
क्या है और क्या करता है ये?
Romans chapter 8.
रोमियों का आठवां अध्याय.
And verse 15 and 16.
और 15 और 16 पद.
You've not received again a spirit of slavery leading to fear. You've received a spirit of adoption whereby you cry out, Abba, Father.
तुमने दासत्व का आत्मा नहीं पाया, फिर भयभीत हुए, फिर भी पत्रों के समान लिपालक पद का आत्मा पाया, जिसे हम हे पिता हे अब्बा कह के पुकारते हैं।
Now look at verse 16.
रोमियों का 8वां अध्याय 15वां पद।
The Spirit testifies himself or witnesses with our spirit that we are the children of God.
आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ मिलकर साक्षी देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं।
Now a Christian cannot lose his salvation.
एक मसीही अपना उद्धार नहीं खो सकता है.
But he may lose the assurance of his salvation.
लेकिन एक विश्वासी अपने उद्धार के आश्वासन को खो सकता है.
His salvation does not change.
उसका उद्धार बदलता नहीं है.
But the assurance of his salvation may change.
लेकिन उसके उद्धार का आश्वासन बदल सकता है.
But God has given us the Holy Spirit in order to assure us that we are children of God.
लेकिन परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा हमको दिया है ताकि हमको ये निश्चयता दे सके, आश्वासन दे सके कि हम परमेश्वर की संतान हैं.
What is the evidence of that assurance?
और इस आश्वासन या निश्चयता का प्रमाण क्या है, सबूत? इस पद को लिख लीजिए.
Romans chapter 14,
रोमियों का 14 अध्याय,
and verse 17,
और उसका 17 पद.
Very familiar verse,
बहुत ही जानी पहचानी पद है ये.
The kingdom of God is not eating and drinking,
क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं है.
God's true spiritual kingdom is not so much just outward performance of religious ceremony.
परमेश्वर का राज बाहरी दिखावे के रीति रिवाज और विधियां नहीं है.
But it is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit.
लेकिन वो धार्मिकता, मेल और आनंद है जो पवित्र आत्मा में है.
The Holy Spirit gives an increased practical righteousness in our life.
पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रतिदिन बढ़ते हुए व्यवहारिक धार्मिकता प्रदान करता है.
The Holy Spirit gives an increased inward peace in our hearts.
और पवित्र आत्मा हमें प्रतिदिन बढ़ता हुआ भीतरी आनंद देता है.
It is not as the world gives.
वो ऐसा आनंद जो संसार नहीं देता.
It is the peace that Christ gives by the Holy Spirit.
और ऐसी शांति जो पवित्र आत्मा देता है यीशु मसीह के द्वारा.
And it says the Holy Spirit gives us joy.
और पहली बार शांति देता है और साथ ही साथ आनंद भी देता है.
So what is the witness of the Holy Spirit?
तो पवित्र आत्मा की साक्षी या गवाही क्या है?
He takes the promises of the Word of God.
जब वो परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञाओं को लेता है.
And he speaks impersonally and spiritually to your own heart.
और फिर वो व्यक्तिगत तौर से और आत्मिक तौर से हमारे हृदयों से बात करता है, हमारे हृदय में लागू करता है.
And it produces peace, and it produces joy, and it produces assurance.
और फिर उसके द्वारा प्रेम और आनंद और शांति उत्पन्न होती है, धार्मिकता उत्पन्न होती है.
Now notice chapter 15.
ध्यान दीजिए 15 अध्याय में.
Paul prays that they might have an increase of this witness of the Holy Spirit.
पौलुस प्रार्थना करता है कि ये लोग इस भीतरी गवाही, पवित्र आत्मा की गवाही में बढ़ते चले जाएं.
Notice verse 13.
ध्यान दीजिए 13 पद में पौलुस क्या प्रार्थना करता है.
Prayer.
उसकी प्रार्थना ये है.
Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so you will abound in hope by the power of the Holy Spirit.
अब आशा का परमेश्वर तुम्हें विश्वास करने में संपूर्ण आनंद शांति से परिपूर्ण करे, जिसे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए.
The ministry of the Holy Spirit,
पवित्र आत्मा की सेवकाई
है, and the power of the Holy Spirit,
और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में,
can produce increased joy and peace and hope within our own heart.
उसके द्वारा बढ़ता हुआ आनंद, शांति और विश्वास उत्पन्न होता है हमारे हृदयों में.
And this is the witness of the Holy Spirit.
और ये है पवित्र आत्मा की गवाही का काम, साक्षी का काम. ध्यान से
सुनिए. क्रिश्चियन कैन नॉट लूज हिज सैल्वेशन.
एक सच्चा विश्वासी अपने उद्धार को नहीं खो सकता.
बट ही कैन यू लूज द जॉय एंड द एश्योरेंस ऑफ आवर सैल्वेशन.
लेकिन वो अपने उद्धार के आनंद को, अपने उद्धार के निश्चयता या आश्वासन को खो सकता है.
व्हाट डिड डेविड से इन साम 51?
और दाऊद ने भजन 51 में क्या कहा?
दैट क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट ओ गॉड.
मेरे भीतर एक पवित्र हृदय को बना.
And take not your Holy Spirit from me.
और अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे मत लीजिए.
Restore to me the joy of my salvation.
मुझे मेरे आनंद, उद्धार के आनंद को पुनः स्थापित कर दीजिए.
He didn't say restore to me my salvation.
वो ये नहीं कहता है कि मेरे उद्धार को मुझ पे पुनः स्थापित कर दीजिए.
He said restore to me the joy of my salvation.
लेकिन वो कहता है मेरे उद्धार के आनंद को मेरे पुनः दे दिए मुझे.
And he said, take not your Holy Spirit from me.
वो कहता है कि अपनी पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना कर.
Now listen carefully.
वो ध्यान से
सुनिए. In order to properly interpret David's meaning, you must understand the context.
और आपको दाऊद की प्रार्थना को सही तरीके से समझने के लिए आपको संदर्भ को समझना पड़ेगा.
Because some people say this.
कुछ लोग ये कहते हैं.
If you sin,
अगर तुम पाप करोगे,
the indwelling and sealing of the Holy Spirit will be taken away from you.
कुछ लोग ये कहते हैं अगर तुम पाप करोगे तो तुम्हारा भीतर जो पवित्र आत्मा रहता है और उसकी छाप है वो तुमसे ले ली जाएगी, अलग कर दी जाएगी.
And you will lose your salvation.
और फिर तुम अपना उद्धार खो दोगे पाप करने के बाद.
But in the context of the Old Testament,
लेकिन पुराने नियम के संदर्भ में,
and the ministry of the Holy Spirit in the lives of saints and true believers,
और पवित्र आत्मा की सेवकाई विश्वासियों और सच्चे संतों के जीवन में,
and the ministry of the Holy Spirit in the peculiar prophets and priests and kings of the Old Testament,
और पवित्र आत्मा की सेवकाई विशेष तौर से याजकों, राजाओं और भविष्यद्वक्ताओं के जीवन में,
there was an anointing and an empowering of the Holy Spirit upon those three individuals.
इन तीन तरह के लोगों पर, याजकों, भविष्यद्वक्ताओं और राजाओं के ऊपर एक विशेष तरह का अभिषेक होता था पुराने नियम में पवित्र आत्मा का उस समय.
You remember the first king of Israel, Saul, when he became king.
याद है आपको उस समय इज़राइल का पहला राजा शाऊल जब उसको वो राजा बन गया.
It says the Holy Spirit came upon him.
पवित्र आत्मा उसके ऊपर आ गया उस समय, उतर गया.
And it changed him.
और उसने उसको बदल दिया.
And he began to prophesy.
और फिर वो भविष्यवाणी करने लगा.
Listen carefully.
That
was the Spirit of God anointing him and setting him apart for the peculiar office of a king.
वो उस समय पवित्र आत्मा उसको राजा के कार्य के लिए विशेष तौर से अलग करके अभिषेक कर रहा था.
And when he sinned,
और जब उसने पाप
किया, the Holy Spirit departed from him.
तो पवित्र आत्मा ने उसको छोड़ दिया, उसे अलग किया.
God's anointing for him as a king in the Old Testament was removed.
और परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर एक राजा के रूप में हटा लिया गया उसके पाप करने के बाद.
And so when David sinned,
तो इसीलिए जब दाऊद
ने पाप किया, the joy of his salvation,
उसने अपने उद्धार के आनंद को खो दिया.
And when he said, take not your Holy Spirit from me,
और जब वो कह रहा है अपने पवित्र आत्मा को मुझसे मत ले लेना,
what does he say?
वो कह क्या रहा
है? He didn't mean, Lord, I'm going to lose my salvation.
वो ये नहीं कहे प्रभु जी मैं अपना उद्धार खो दूंगा.
In all probability he meant, Lord, take not your anointing as king away from me.
वो सारी संभावना ये है परमेश्वर से कह रहे हैं, प्रभु एक राजा के रूप में जो अभिषेक मेरा किया गया है उस अभिषेक को मुझसे मत ले लीजिएगा.
Listen carefully.
ध्यान से इस बात
को. True child of God.
परमेश्वर का एक सच्चा संतान.
Born again by the Holy Spirit.
पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म
पाया. Justified by grace through faith.
और विश्वास के द्वारा
indwelled by the Holy Spirit.
जिसके भीतर पवित्र आत्मा
baptized into the living head.
और पवित्र जीवित सर में जिसका
बपतिस्मा हुआ. Spirit until the day of redemption.
छुटकारे के दिन तक की जिसके पर पवित्र आत्मा के
never perish.
वो कभी नहीं
खोएगा. Will never lose his salvation.
वो कभी भी अपना उद्धार नहीं खोएगा.
Because it is rooted in eternity past.
क्योंकि उसका उद्धार अनंत काल पूर्व में जड़ पाता है.
But listen carefully.
ध्यान से इस बात को.
He may lose the assurance and the joy of his salvation.
लेकिन वो अपने उद्धार के आश्वासन को और अपने उद्धार के आनंद को खो सकता है.
And that is what Paul calls in the armor of God in Ephesians 6, the helmet of salvation.
और इसी बात ने इफिसियों के छठे अध्याय में बात करते हुए पौलुस इसको उद्धार की टोप करके वर्णन करता है इस बात को.
And what did you mean by the helmet of salvation?
और उद्धार की टोप से मतलब क्या हो गया उसका?
He explains that to us in 1 Thessalonians 2 Thessalonians. First, where is that verse, brother? And taking up as a helmet the hope. Chapter 5, 1 Thessalonians. 1 Thessalonians chapter
5.
And notice verse 8. Since we are of the day, let us be sober, having put on the breastplate of faith and love, and as a helmet the hope of salvation.
उसके आठवां पद, परंतु इसलिए कि हम दिन के हैं, आओ हम विश्वास और प्रेम का कवच तथा उद्धार की आशा का टोप पहनकर सतर्क हो.
Listen carefully.
ध्यान सुनिए इस बात को.
God wants his children to know that he loves them.
परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे लोग जान जाएं कि वो उनसे प्रेम करता है.
He wants them to grow in an increased confidence of his love.
वो चाहता है कि वो लोग उसके प्रेम के प्रति और भी अधिक निश्चित आश्वासन में भरोसे में बढ़ जाएं.
Regarding the assurance of our salvation, there are two extremes.
अब हमारे विश्वास के आश्वासन निश्चयता के संबंध में दो चरम सीमाएं होती चरम बात होती हैं.
One extreme is a false, empty, or vain hope.
एक चरम स्थिति यह है कि जब लोग झूठी और खोखली आशा रखते हैं.
He has a lot of assurance, but he doesn't have real salvation.
और कई बार लोग के पास बहुत ही निश्चयता आश्वासन होता है लेकिन उसका सच्चा उद्धार नहीं होता है.
The other extreme.
लेकिन दूसरी चरम स्थिति
है. He is truly saved.
वो वास्तव में बचाया गया है.
But he has weak assurance.
लेकिन उसके पास कमजोर आश्वासन है.
But the Holy Spirit witnesses to our spirit that we are the children of God.
लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं.
And when a man has on a, when a soldier has on his helmet, he's ready to fight.
जब एक व्यक्ति के सर में टोप लगी होती है तो वो लड़ाई करने के लिए एक सैनिक तैयार है युद्ध करने के लिए.
But if a Christian doesn't have a growing full assurance, he is not ready really to go out and serve the Lord.
और इसीलिए जब एक विश्वासी के पास ये उद्धार का आश्वासन निश्चयता के साथ नहीं होता तो प्रभु की सेवा करने के लिए बाहर जाने के लिए वो तैयार नहीं होता है.
So the writer of Hebrews says this.
इसीलिए
Hebrews and chapter 6.
इब्रानियों उसका छठा अध्याय.
Verse 11.
इब्रानियों 6:11 पद में ये कहता है.
We desire that each one of you show the same diligence so as to realize the full assurance of hope until the end.
हमारी इच्छा ये कि तुम में से प्रत्येक अपनी आशा की पूर्ण निश्चयता को प्राप्त करने के लिए अनंत अंत तक प्रयत्नशील रहो.
There's a weak assurance.
एक है कमजोर आश्वासन.
There's a growing assurance.
एक है बढ़ती हुई बढ़ता हुआ आश्वासन.
There is a full assurance.
एक है संपूर्ण आश्वासन.
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए.
Your responsibility as a teacher.
आपकी जिम्मेदारी एक शिक्षक होने के नाते.
So preach and teach the promises of God so the people of God will be able to grow in their assurance.
आपको लोगों को ऐसा सिखाना है समझाना है ताकि परमेश्वर के लोग अपने आश्वासन और निश्चयता में उद्धार के आश्वासन निश्चयता में बढ़ चले जाएं.
That is one of the most blessed ministries of the Holy Spirit.
ये पवित्र आत्मा की सेवाओं में से एक अत्यंत ही आशीषमय सेवा है.
Number two.
दूसरी बात.
There is the comfort or the fellowship of the Spirit.
पवित्र आत्मा की सहभागिता. Comfort. सांत्वना और संगति. पवित्र आत्मा की सांत्वना और संगति.
Now this is a little different from the assurance of the Spirit.
ये पवित्र आत्मा के आश्वासन से हल्का सा फर्क है.
The assurance of the Spirit is the work of the Spirit giving us an increased confidence of our salvation.
आश्वासन की जब हम बात करते हैं जब हम गवाही की बात करते हैं तो ये बढ़ती हुई पवित्र आत्मा की तरफ से हमें आश्वासन या निश्चयता मिलती कि हम परमेश्वर के हैं.
The comfort or the fellowship of the Spirit is the Holy Spirit giving us consolation and strength in the midst of difficulty or sorrow.
लेकिन जब हम पवित्र आत्मा की संगति या सांत्वना की बात कर रहे हैं तो इसका ये मतलब कि मुश्किलों के बीच में और कठिनाई के बीच में और दुख के बीच में पवित्र आत्मा हमको दिलासा देता है या सांत्वना देता है या आश्वासन देता है.
Look in the book of Acts.
तो ये दूसरी बात कर रहे हैं.
Acts काम में chapter 9.
पेदर काम उसके नवे अध्याय. फर्क समझ रहे ना आप लोग इसमें दोनों में.
Paul has been converted and he begins to preach Christ at Damascus.
पेदर काम उसके नवे अध्याय में पौलुस का हृदय परिवर्तन हो गया. वो दमिश्क में सुषमाचार प्रचार कर रहा है.
And look at verse 29.
और यहाँ पे देखिए 29वें पद में.
He was talking and arguing with the Hellenistic Jews and they were attempting to put him to death.
और ये यूनानी भाषी यहूदियों के साथ बातचीत और वादा
Verse 30, when the church heard of it, they brought him down to Caesarea and sent him back to Tarsus.
लेकिन जब भाइयों को ये मालूम हुआ तो इसे कैसे लेके आए उन्हें तुरंत वापस तरसुस भेज दिया.
Now notice verse 31.
यहाँ पे ध्यान दीजिए.
It's an interesting description of the church.
यहाँ पे एक वर्णन है कलीसिया का.
It says the church throughout Judea and Galatia and Samaria enjoyed peace.
यहाँ पे लिखा है कि यहूदी गलील सामरिया की कलीसिया को शांति मिली
and they were built up.
और उनकी उन्नति हुई
and they were characterized by two things.
और उनमें दो बातें उनको दिखाई दे रही यहाँ पे हम देखते
What does it say, number one?
पहली बात क्या कह रही है वो
Look at the verse.
पद को देखिए यहाँ पे
It said they continued in what?
वो किस चीज में बढ़ते चले गए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है पवित्र नहीं उससे पहले क्या लिखा किस चीज में बढ़ते चले गए दो बातें पहली बात क्या है किस चीज में बढ़ते चले आ रहे हैं वो लोग प्रभु के भय में बढ़ते चले आ रहे हैं
And what's the second thing?
और दूसरी बात क्या है पवित्र आत्मा के पवित्र आत्मा प्रोत्साहन में बढ़ते चले आ रहे हैं
The comfort of the Holy Spirit.
ये है पवित्र आत्मा का की संगति और
That is the Holy Spirit coming in a special and peculiar way in the midst of difficulty or trial or sorrow and speaking peace and consolation to your heart.
ये है पवित्र आत्मा का काम मुश्किल समय में दिक्कतों में परेशानियों में दुख में एक विशेष काम जिसमें आ करके वो हमको दिलासा दिलाता है प्रोत्साहित करता है प्रोत्साहन देता है और सांत्वना देता है
Write this verse down.
और ये पद एक और पद लिख लीजिए
Philippians.
फिलिपियों
Chapter 2.
दूसरा अध्याय
And verse 1.
और पहला पद
Now look at it with your own eyes.
दूसरा अध्याय उसका पहला पद अपनी आंखों से खुद देख लीजिए
What does Paul say?
पौलुस क्या कहता है यहाँ पे?
If there is any encouragement in Christ.
कह रहा है अगर मसीह में कुछ प्रोत्साहन है
And of course he knows and says there is.
और वो जानता है कि मसीह में प्रोत्साहन
If there is any consolation of love.
वो कह रहा है प्रेम की कोई सांत्वना है
If there is any fellowship of the Holy Spirit.
और आत्मा की सहभागिता है
Now it says the Holy Spirit fellowships with us.
वो कह रहा है कि पवित्र आत्मा हमसे सहभागिता करता है संगति करता है
He comes down to help us.
वो आता है हमारे पास हमारी मदद करता है
What does Jesus say in John 14 and John 16?
यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 और 17 में क्या कहा है
He says it is better for you that I go away.
वो कहता है कि बेहतर है कि मैं संसार से चला जाऊं
Because if I go away, I will send you another helper.
क्योंकि अगर मैं चला जाऊंगा तो मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा
चैप्टर 14
14
अध्याय 16 और 16 पद में देख लिए
और मैं पिता से वृद्धि करूंगा वो तुम्हें एक सहायक देगा कि वो सदा तुम्हारे साथ रहे
and the idea in the picture is one that comes along beside you to encourage you and to exhort you.
और यहाँ पे इस तरह का विचार है जिसमें चित्रण होता है उसका कि वो हमारे बगल में आएगा साथ में आएगा और हमारी सहायता करेगा मदद करेगा बगल में आकर के
He is called the comforter.
और उसको संतावना देने वाला कहा जाता है
Where is he called the comforter, brother?
कहां पे लिखा है कि वो संतावना देने वाला कहलाएगा या प्रोत्साहन देने शांति देने वाला
Find that verse.
कहां है ये पद इसमें कहां लिखा है यहां पे कहीं लिखा होगा आपको मालूम होगा हाँ जी नहीं नहीं ये पवित्र आत्मा का काम है पवित्र आत्मा आकर के देगा ना
Maybe that's a different translation. Listen carefully.
ध्यान सुनिए इस बात को.
The ministry of the Holy Spirit.
पवित्र आत्मा की सेवकाई.
You have a trial in your life.
आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है.
You have a sorrow.
आपके को दुख है.
You lose your husband.
आपने अपने पति को खो दिया.
You lose your job.
आपने अपनी नौकरी खो दी है.
You lose your health.
आपने अपने स्वास्थ्य को खो दिया.
You lose your child.
अपने बच्चे को खो दिया है
यू लूज योर मिनिस्ट्री
आप अपने सेविकाई को खो देंगे
एंड देयर इज ग्रेट सोरो
और आपके ऊपर बहुत दुख है
द होली स्पिरिट कैन कम
और उस समय पवित्र आत्मा आपके पास आएगा
एंड ही कैन पुट हिज आर्म अराउंड यू
और वो अपना हाथ आपके कंधे पे रखेगा
ही कैन कम्फर्ट यू इन द मिडस्ट ऑफ डिफिकल्टी
और परेशानी मुश्किलों के बीच में वो आपको संतावना देगा
एंड ही कैन गिव यू अ कॉन्फिडेंस इन द सॉवरेन पर्पस ऑफ गॉड
और वो आपको परमेश्वर की सार्वभौमिक इच्छा पर भरोसा दिलाएगा
यू रिमेम्बर इन एक्ट चैप्टर 16
आपको याद है फिर तो काम 16 अध्याय
Paul and Silas had been preaching at Philippi.
Paulus and Silas, Philippus में प्रचार कर रहे हैं.
The soldiers and the authorities came and put their hands upon them.
और वहाँ पे सैनिक लोग और अधिकारी लोग आए, उन्होंने उनको पकड़ लिया.
They beat them very very badly.
उनको बहुत बुरी तरह से उनकी पिटाई की.
And they put their hands in the stocks.
और उनके हाथों को हथकड़ी में डाल दिया बड़े वाले.
And they put them in the darkest prison.
और उनको सबसे अंधकार में बंदीगृह में डाल दिया.
And at the middle of night.
और रात के बीच में.
When it was darkest.
और जब सबसे अंधेरा था.
And they were in great pain.
और वो बहुत दर्द में थे.
And their hands and feet were locked up.
और उनके हाथ और पैर बंधे हुए थे.
And they didn't know whether they would live or die the next day.
उनको ये भी नहीं मालूम था कि अगले दिन वो जिंदा रहेंगे कि मरेंगे.
What were they doing?
तो वो लोग क्या कर रहे थे रात के समय? क्या वो लोग ये कहते
हैं?
हे प्रभु,
why did this happen to us?
ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ?
We don't understand.
हम नहीं समझते बात को.
He said I would no blessing.
आपने कहा था कि हमें
He said I would be rich.
आपने कहा था मैं अमीर हूँ.
He said I would have no difficulty.
आपने कहा था मेरे पास कोई समस्या नहीं होगी. प्रभु जी, हम नहीं समझ
पा रहे. Why is this happening to us?
ऐसा क्यों हो रहा हमें?
That's not what they did.
ये नहीं कहा उन्होंने.
What did they do?
क्या क्या उन्होंने?
Why?
क्यों आधी रात को परमेश्वर की स्तुति कर रहे
थे?
क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता थी.
And he comforted their hearts.
और उन्होंने उनके हृदयों को सांत्वना दी, दिलासा दी, आश्वासन दिया.
In this world you will have tribulation.
यीशु मसीह ने कहा इस दुनिया में तुम्हारे पर अनेक दुख आएंगे.
But take courage, I have overcome the world.
लेकिन साहस रखो, मैंने इस दुनिया पे विजय पाई है.
Now my question to you is this.
मेरा प्रश्न आपसे ये है.
Do you have the witness of the Spirit?
क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा, आपके पास पवित्र आत्मा की गवाही है?
Do you have a growing assurance that you are a child of God?
क्या आपके बढ़ते हुआ निश्चयता है कि आप परमेश्वर के
A firmer vision and a hope of that which will be revealed.
क्या आपके पास एक दृढ़ और निश्चय आशा है कि एक दिन प्रकट किया जाएगा ये सब?
And when you have difficulties,
और जब आपके सामने परेशानी है,
does the Holy Spirit come and comfort you?
क्या पवित्र आत्मा आपको दिलासा देता है?
And he comforts you with the confidence of the sovereignty of God even in trials.
और परेशानियों के मध्य में भी वो परमेश्वर की सार्वभौमिकता नियंत्रण की बात को याद दिलाते हुए आपको आश्वासन देता है, सांत्वना देता है.
Because when Paul was in the jail at Philippi again, he wrote a letter. But not in Philippi, when he was in the jail, he wrote a letter to the Philippians.
और जब पौलुस दोबारा बंदीगृह में था तो उसने फिलिपियों के लोगों को एक चिट्ठी लिखी.
And he said, I want you to know that my circumstances have turned out for the furtherance and the advancement of the gospel.
और वो उनसे कहता था, मैं चाहता हूँ कि तुम जान जाओ, यद्यपि मैं बंदीगृह में हूँ, लेकिन मेरा बंदीगृह में रहना सुसमाचार प्रचार के बढ़ोतरी के काम आ रहा है.
Paul could see the hand of God even in difficulty.
और पौलुस जो परमेश्वर के हाथ को परेशानी और मुश्किलों में भी देखने पाता है.
Question God.
उसने परमेश्वर पे प्रश्न नहीं किया.
God.
उसने परमेश्वर पे प्रश्न नहीं किया.
God.
उसने परमेश्वर को दोष नहीं दिया.
He didn't complain against God.
उसने परमेश्वर के विरोध में शिकायत नहीं की.
How could this happen?
ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ?
Fellowship of the Holy Spirit.
क्योंकि पवित्र आत्मा की सहभागिता थी उसके साथ.
Speaking comfort to his heart in the midst of difficulty.
और मुश्किलों के बीच में परमेश्वर पवित्र आत्मा उसको दिलासा दे रहा था.
Especially giving him a confidence that God in his sovereignty was doing all things well.
और उसको इस बात का विशेष भरोसा दे रहा था कि परमेश्वर अपने सार्वभौमिकता में होकर के हर एक चीज पर नियंत्रण रखते हुए उसको सहायता कर रहे समस्या में भी.
And my question to you is this.
मेरा प्रश्न आपसे ये है.
Do you know the comfort and the consolation of the Holy Spirit?
क्या आप पवित्र आत्मा के आश्वासन और सांत्वना दिलासा को समझते हैं, जानते हैं? यदि आप प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, यदि आप सत्य का प्रचार करना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को लागू करके
according to the principles of the word of God,
अगर आप परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों के अनुसार जीना चाहते हैं,
if you're going to do ministry according to the principles of the word of God,
अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार सिद्धांतों के अनुसार सेवा करना चाहते हैं,
people may not understand you,
लोग आपको नहीं समझेंगे,
they may not agree with you,
वे आपके साथ सहमत नहीं होंगे, हो सकता है आपका विरोध भी करेंगे,
and they may be true believers,
हो सकता है वो लोग सच्चे विश्वासी
हों, because they don't believe what you believe,
क्योंकि वो लोग विश्वास नहीं करते जो आप विश्वास करते हैं,
they don't understand what you understand,
क्योंकि वो समझते नहीं आप जो समझते हैं.
They don't act according to the principles of the word of God.
और परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों के अनुसार वो लोग कार्य नहीं कर रहे.
You are going to serve God.
और आप परमेश्वर की सेवा करेंगे.
You are going to preach the truth.
और अगर आप सत्य का प्रचार करेंगे.
And you are going to apply it to men's hearts.
अगर आप लोगों के जीवनों के हृदय में लागू करेंगे.
And you will be a man of conviction.
अगर आप अपने सिद्धांतों के व्यक्ति होना चाहते हैं विश्वास के.
Do not act upon consequence or result.
तो परिणाम क्या होगा और आगे क्या होने वाला उसके अनुसार कार्य मत करिए.
But you act upon the principle of the word of God.
लेकिन आप परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों के अनुसार काम करेंगे.
And you say, I don't care about the consequence. I want to act on the principle of the word of God.
तो आप कहेंगे परिणाम क्या होगा, प्रतिफल क्या होगा, उसकी मैं नहीं चिंता करता, लेकिन परमेश्वर के वचन के रीति के अनुसार मैं कार्य करूंगा.
Many preachers make decisions based upon consequences or results.
बहुत सारे प्रचारक लोग निर्णय बनाते हैं इस आधार पे कि अंत में क्या परिणाम निकलेगा.
Well, if I preach this, people won't like me.
हो सकता है वो ये कहते हैं अगर मैं ये प्रचार करूंगा तो लोग शायद मुझे पसंद नहीं करेंगे.
If I go tell this rich man in my church his sin, he will leave the church with his money.
अगर मैं उस अमीर आदमी को उसका पाप बताऊंगा मेरी कलीसिया में जो है तो फिर वो मेरी
कलीसिया छोड़ने को पसंद नहीं करेगा. Closely to people's lives, they may not like me.
अगर हम लोगों के जीवन के बड़ी नजदीकी से बात करेंगे तो हो सकता है वो मुझे मुझको पसंद नहीं करेंगे.
And he's thinking about the consequences.
क्योंकि वो परिणामों और प्रतिफल और क्या होगा उसके बारे में सोचते हैं. लेकिन एक पवित्र व्यक्ति जिसके पास पवित्र आत्मा की मदद है और जो पवित्र आत्मा की संगति को जानता है
एक्ट अपॉन प्रिंसिपल
वो सिद्धांतों और परमेश्वर के वचन की रीतियों के अनुसार काम करेगा चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े.
मैटर व्हाट द कॉन्सिक्वेंस
चाहे जो भी परिणाम हो
व्हेदर ही लिव्स और व्हेदर ही डाइज
चाहे वो जिए चाहे वो मरे चाहे जो भी प्रतिफल हो
इवन टू हिज ओन हर्ट बट ही विल नॉट चेंज
वो चाहे उसके खुद के चोट लगे हो लेकिन फिर भी वो बदलेगा नहीं.
He's not a man of compromise.
Compromise. हेरा फेरी समझौता करता नहीं है वो व्यक्ति समझौता नहीं करता है.
Why?
क्यों?
Because he has someone with him.
क्योंकि उसके साथ कोई है हमेशा.
And even in trial,
परेशानियों में भी परीक्षा में भी विरोध के बीच में भी
and even in difficulty,
मुश्किलों में भी
and even in great sorrow,
और बड़े दुख के समय में भी
the Spirit of God comes.
परमेश्वर का पवित्र आत्मा आता है
and he puts his arm around us.
और अपना हाथ उसके कंधे पर लगाता है
and he comforts us.
और फिर उसको सांत्वना देता है
with the sovereign purposes of God.
परमेश्वर के सार्वभौमिक इच्छा के अनुसार
with the unchanging love of a heavenly father.
स्वर्गीय पिता के ना बदलने वाले प्रेम के साथ
and with the presence of the Lord Jesus by the power of the Holy Spirit.
पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा यीशु मसीह की उपस्थिति के साथ.
These are a couple of the experiential ministries of the Holy Spirit in the life of the believer.
एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा की यह कुछ अनुभव की जाने वाली सेवा है.
So let's take a break.
आइए हम लोग एक अवकाश लेंगे छोटा सा.
And let's ask for more help and grace of the Spirit of God in the days ahead.
और हम पवित्र आत्मा की मदद के लिए प्रार्थना करेंगे आने वाले दिनों के लिए.
Let's pray.
आइए हम लोग प्रार्थना करें.